ओम शांति। आज आप सब बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? सभी खुश नजर आ रहे हैं बहुत। हाँ, मैंने तो सोचा था मैं खुशी पर क्लास कराऊंगा, पर आप पहले ही खुश हैं, तो क्या किया जाए? अब क्या टॉपिक रह गया? यही हो सकता है कि ज्यादा खुश हो जाएं, या जितने खुश हैं उतने सदा खुश रहें, यही टॉपिक हो सकता है ना? अच्छा, हमारे आज की मुरली आप सबने सुनी, उसमें एक शब्द आ रहा था क्या, कि आपको क्या तात लगी रहे, था ना? हैं? क्या तात लगी रहे, बच्चों को क्या तात लगी हुई है बताओ। तो मैं सोच रहा था जो बाबा के बच्चे हैं उनको तात लगती है ना? मीरा का एक भजन भी है, पता नहीं क्या तात है? और जो माया के बच्चे हैं उसको क्या लगती है? हैं? देखो कितना आसान उत्तर है। बाबा के बच्चों को तात लगती है तो माया के बच्चों को क्या लगती है? हैं? लात लगती है। लात वो खाते ही रहते हैं धक्का। फिर था बाबा के बच्चों को धुन लगी हुई है, बच्चों पर धुन सवार है, ठीक है? बाबा के बच्चों को क्या लगी हुई है? धुन। और माया के बच्चों को क्या लगी हुई है? घुण, है ना? वो घुण होती ना जो अंदर ही अंदर खा जाती है। तो मैं यही सोच रहा था कि शब्द एक जैसे हैं, लेकिन माया के बच्चे बनने से घुण लग जाती है और सारी खुशी को खा जाती है, और बाबा के बच्चों को धुन लग जाती है ना? जो गीत होता है उसमें भी धुन होती है ना, धुन। तो जो गीत गाएंगे नाचेंगे वो तो धुन याद रखेंगे, और बाकी अंदर ही अंदर घुण। घुण का क्या होता है? ऊपर से वैसे ही लगती है चीज, कुर्सी होगी ना ऊपर से वैसे ही लगेगी, पेड़ होगा ऊपर से वैसे ही लगेगा, अंदर उसके खोखला होता जाएगा। एक दिन ऐसे करोगे सारा खत्म। तो माया के लोगों को क्या करना पड़ता है? अपना ऊपर से रूप वैसे ही रखना पड़ता है, अंदर दुखी होंगे तो भी हंसते रहेंगे, घर में मेहमान आएगा सोचेंगे मुसीबत आ गई, ऊपर से हंसेंगे आइए जी, हैं, है ना? तो अंदर से सोचेंगे जाइए जी कब होगा, है ना? मेहमान आने से खुश सब होते हैं, मेहमान से खुश सब होते हैं, कई आने से खुश होते हैं कई जाने से खुश होते हैं, इसलिए वो गुण जो है ना अंदर ही अंदर उनको खा जाती है, दो रूप रखने पड़ते हैं। हम तो सब बच गए इस बात से। और फिर बाबा मुरली कितनी इंटरेस्टिंग करके सुनाता है, कहानी की तरह सुनाता है। क्या कहानी सुनाई? कौन सी अमर कथा सुनाई? ए, पहले क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था। एक बारी हमने प्रदर्शनी की तो हमने सोचा प्रदर्शनी में देवता धर्म को ऊंचा दिखाना है, बाकी धर्मों से क्या करें। तो झाड़ के चित्र में तो है, इतने साल पहले एक धर्म हुआ, इतने साल पहले एक हुआ, सबसे पहले देवता था, लेकिन वो लोगों को समझ में नहीं आता। तो हमने झंडे बनवाए, ऐसे झंडे होते हैं ना, झंडे बनवाए, और झंडे के डंडे जो थे ना वो बड़े छोटे करके बनवाए, सबसे बड़ा झंडा बनाया देवता धर्म का, उसके ऊपर लिखा 5000 साल, लक्ष्मी नारायण का चित्र लगा दिया उस पर। और फिर दूसरा झंडा बनाया उससे छोटा छोटा, वो सुनहरे रंग का था, वो सिल्वर रंग का था, उस पर लिखा क्या, राम सीता का राज, कितने साल, 3750। अच्छा, उसके बाद बनाया बुद्ध का, वो छोटा डंडा था, उसका उसका हमने लिखा 2500। फिर उसके बाद बनाया ईसाइयों का 2000, फिर मुसलमानों का 1400, ऐसे करके झंडे लगा दिए, रंग वो हरे रंग का लगा दिया वो ऐसे। तो जब जो आए, अब वो ये तो कह ही नहीं सकता कि देवता धर्म सबसे पुराना नहीं है, सबसे ऊंचा नहीं है। इसलिए अब मुझे आज याद आ रहा था कि कई लोग लाखों वर्ष का ऐसे ऐसे कहते हैं, बाबा ने तो बच्चों को आगे का पीछे का बता दिया है ना, अभी आप कहाँ खड़े हैं, हाँ अभी कितने साल और हैं कल्प पे, हाँ कितने साल कहोगे आप? 5000 साल, क्योंकि हमारा चक्कर तो चलता ही रहना है, है ना, 5000 साल, किसी भी चीज को 5000 साल, आज से 5000 साल, ये कब होगा? 5000 साल के बाद होगा। पहले कब हुआ था? 5000 साल पहले हुआ था। नथिंग न्यू, है ना, दुनिया के लिए एवरीथिंग न्यू। तो एवरीथिंग न्यू वाले को क्या होता है और नथिंग न्यू वाले को क्या होता है? नथिंग न्यू वाले को कभी भय नहीं होता। सबसे आजकल सबसे बड़ा रोग जो मन को लगा हुआ है वो कौन सा है? भय का रोग, है ना, डर। तो डर जो है सबसे बड़ा खतरनाक रोग डर का है। आगे होता था मृत्यु होनी है, चलो मृत्यु का, लेकिन ये होता था कि मृत्यु भाई चलो बूढ़े हो जाएंगे, पूरी आयु भोग लेंगे तो मृत्यु होगी। आजकल क्या है? कभी भी हो जाए, है ना। एक होती मृत्यु, मृत्यु होना इतना तकलीफ नहीं देता, लेकिन मृत्यु का भय होना ज्यादा तकलीफ देता है। अब किसी को कहो तुझे मारना है और कोई बंदूक लेकर खड़ा हो जाए, उसका क्या हाल होगा? मारे भी नहीं बंदूक, सामने लेके खड़ा हो जाए तो क्या होगा? वो घबराएगा, हैं भाई मारना तो मार है, उसको मौत का भय बहुत ज्यादा हो जाता है। देखा कभी आपने? बाबा ने कहा है इस समय कलयुग के अंत में मनुष्य का जन्म पशु से भी क्या हो गया। वैसे तो कई कारण है इसके, लेकिन भय भी एक कारण है। जो पशु होते हैं उनको जब दुख होता है, चोट लगती है या कुछ, उस समय वो दुखी होते हैं। जब वो पूरा हो जाए दुख, चुप हो जाते हैं। दुख होने से पहले उनको ये नहीं लगता मेरे को दुख आएगा। बच्चे को भी ऐसे ही होता है, बच्चे को आप इंजेक्शन लगाना हो, हंसता हुआ होगा, जब इंजेक्शन लगाओगे रोएगा, फिर उसके बाद उसको बिस्कुट दे दो फिर हंसने लग जाएगा। लेकिन ये जो होश वाले मनुष्य हैं, इनको भय पहले से ही, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, इसको व्यर्थ संकल्प भी कहते हैं, ऐसे हो गया तो क्या होगा, ऐसे हो गया तो क्या होगा, अच्छा फिर हो गया उसके बाद फिर ऐसा ना होता तो अच्छा था, ऐसा ना होता तो अच्छा था, कहीं ये फिर ना हो जाए, इसमें उसका टाइम बहुत वेस्ट जाता है। एक मुरली में बाबा ने कहा है कि पश्चाताप को भी लंबा घसीटना, किसी गलती का उसका अनुभव ले लेना और बात है, लेकिन उसका पश्चाताप ही करते रहो पश्चाताप ही करते रहो, वो भी वेस्ट ऑफ टाइम है। आपकी ब्रेक ठीक नहीं है, फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। इसका भी कारण क्या होता है? भय। अब हो गया, अब क्या होगा, क्यों, क्या, कैसे, ये सब। इसलिए ज्ञान का एक बहुत स्ट्रांग धारणा है, उसका नाम है निर्भयता, है ना, निर्भय। तो निर्भयता के लिए हमें सारे हथियार बाबा ने दिए हुए हैं। ज्ञान किस लिए है? जो हमको कहते हैं मास्टर त्रिकालदर्शी, आगे का भी पता है, पीछे का भी पता है, जो होगा वो भी पता है, जो हुआ उसका भी कारण पता है, जहां हम खड़े हैं वो भी पता है, क्यों है ये भी पता है, फिर भय काहे का? मान लो अभी हमें कहा जाए जाओ जाके सामने की पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाओ, है बहुत खतरा है चढ़ जाओ, तो आप क्या करोगे? चढ़ जाओगे या भय करोगे, शेर ना आ जाए, भालू ना खा जाए, ये ना हो जाए, क्या करोगे? अगर त्रिकालदर्शी हैं तो क्या मालूम है कि जब इस शरीर का 84वें शरीर का अंत आना है, कोई उसको रोक सकता है? ड्रामानुसार आना ही है। जब नहीं आना है तो हम चाहें भी तो नहीं आना है। जिस दिन आना है उस दिन अपने आप ऐसी घटना होगी कि आप कितना भी बचाव कोई करेगा वो आ जाएगा। हमारे साथ ये एक घटना एक्चुअल हुई थी। हम सुबह अमृत वेले योग के बाद हमारे सेंटर के पास एक पार्क है, उसका एक चक्कर लगाने जाते हैं, रोज जाते हैं। एक दिन हम चक्कर लगाने गए तो उस तरफ जिधर से जाते हैं ऐसे जैसे ड्रामा का चक्कर घूमता है, ऐसे क्लॉक वाइज जाते हैं, तो वहां पर एक शादी का टेंट लगा हुआ था और उसकी वजह से उन्होंने बाहर बहुत जोर से लाइट लगाई हुई थी सड़क पर। तो मैंने सोचा कि चलो ये लाइट जोर से लगाई हुई है, मैं दूसरी तरफ से चले जाता हूँ, ये सोच के चल पड़े। जब आगे गए तो कुछ कुत्ते भौंक रहे थे, तो मैंने समझा कि भाई वैसे तो हम रोज जाने वालों को कभी वो भौंकते नहीं, काफी सारे, मैंने सोचा पता नहीं क्यों भौंक रहे हैं। थोड़ा आगे गए तो अंधेरे में से दूसरी साइड से कुत्ते ने हमारे को आके यहां से पकड़ लिया जोर से। अच्छा, अब पकड़ लिया, बहुत मुश्किल से उसको छुड़ाया, एक चौकीदार था कोठी का, उसने डंडे मार के उसको हटाया। फिर हम थोड़ा आगे गए, वो फिर जोर से भागा हमारे पीछे और आके उसने फिर पांव को पकड़ लिया। फिर उसने एक और आदमी ने आके बहुत उसको मारा। फिर मैंने उसे कहा कि कुछ पागल कुत्ता लगता है, इसीलिए उसको बाकी भी भौंक रहे थे, तुम मुझे छोड़ आओ। वो कहता अच्छा। वो मुझे छोड़ने गया सेंटर पर, थोड़ी दूर आगे जाके वो फिर आया, वो गोली की तरह भागा हुआ। फिर उसने उसको बहुत मारा चौकीदार ने, मुझे कहा आप जाओ। फिर मैंने चेक करवाया, उसने वहां गुरुद्वारा उसकी माताओं को भी काट रहा था, आखिर वो पागल कुत्ता था, हो गया। अब मैंने सुना था पागल कुत्ते के काटने से बड़े इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, ये हुआ, आजकल तो कम हो गया, खैर वो लगवाए सारे। तो फिर मुझे कोई कहे आप पार्क में न जाया करो, मैंने कहा भाई क्यों, ये तो उस दिन होना था और कुदरती देखो मैं उसी रास्ते से गया, ड्रामा अनुसार अगर मैं देर से जाता तो शायद उसको पहले ही लोग उसको मार देते, तो ये तो घटना घटनी थी, मैं उसमें क्यों डरूं कि भाई अब सारे कुत्तों से मैं भय करना शुरू कर दूं, पार्क से भी भय करना शुरू कर दूं। इसीलिए ये जो घटनाएं हैं, आप टोटल देखोगे व्यक्ति की प्रारब्ध है उसके अनुसार सुख आता है, व्यक्ति की प्रारब्ध के अनुसार दुख आता है। तो भय का नाश जैसे अंधेरे का नाश रोशनी से होता है, भय का नाश ज्ञान से होता है, और ज्ञान भय को चारों तरफ से रोशनी देकर हमें बता देता है कि भय करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आत्माओं में भय के संस्कार होते हैं और भय से तनाव भी होता है, किसी को किसी चीज का भी भय हो जाए तो सारा दिन उसी फिक्र में लगा रहेगा, उसको खाना भी खाएगा अच्छा नहीं लगेगा, कोई ओम शांति कहेगा वो भी मरा हुआ से कहेगा ओम शांति, हर चीज उसका ढीला ढाला होगा क्योंकि भय अंदर है। तो भय का दूसरा कारण क्या है, देहभान। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा भय होता है किसी चीज के एक नुकसान का है, नुकसान का, और ये पता होता है कि मृत्यु हो गई अगर तो सारा ही गया। अभी नया नया सेंटर बनाया था, अभी चार जिज्ञासु आने शुरू हुए थे, बोर्ड ही लगाया था, अभी मृत्यु हो जाए तो फिर तो सारा चले जाएगा मेरी मेहनत, है ना। या और भी जो चीजें हैं, कोई नया रेफ्रिजरेटर खरीद के ले आया, अभी ठंडा पानी पिया ही नहीं, अभी मेरी मृत्यु हो जाए तो बड़ा बुरा हाल होगा। मतलब ये मृत्यु से वो ये समझते हैं आप मरे जग पर ले दुनिया के लोग। तो जो देहभान है, देहभान का मतलब क्या कि संसार की सब चीजें, देह और देह के जितने भी संबंध या पदार्थ हैं उसके साथ लगाओ, और जब तक आप सोल कॉन्शियस नहीं होंगे, एक तो सोल कॉन्शियस का ज्ञान भी भय को दूर करता है, आत्मा अमर है, आत्मा में सारे संस्कार हैं, अगर उसमें रेफ्रिजरेटर के संस्कार हैं अगले जन्म में भी मिल जाएगा, अगर नहीं है मांग मूंग के भी लाओगे तो तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, सुख भोगने के संस्कार हैं उतना तो भोगोगे ही, नहीं भोगने के संस्कार हैं कितना भी मेहनत कर लो वो भोग ही नहीं सकते, इस बार कई आत्माओं को आप देखेंगे। तो इसलिए उसमें एक तो ज्ञान है, आत्मा अमर है, तो मृत्यु का भय दुनिया वालों को है, सबको है, और उससे भी ज्यादा अकाल मृत्यु का भय है, पता नहीं कब हो जाए, आजकल तो ऐसा हो गया, वो और भी ज्यादा हर वक्त उनके ऊपर मौत का साया रहता है, वो सुख खुश कैसे हो सकते हैं, सुखी कैसे हो सकते हैं, नकली सुखी भी होंगे तो डरते रहेंगे अभी हमारा सुख छिन ना जाए, सुख हो तो फिर छिने ना, ना अगर छिनने का भय है तो सुख काय का। इस वास्ते मृत्यु का भय आत्मा के ज्ञान से, फिर आत्मा अभिमानी रहने के अभ्यास से खत्म होता है, लेकिन आप देखेंगे फिर भी खत्म नहीं होता, उसका क्या कारण हो गया, ज्ञान भी है, आत्मा का अभ्यास भी करते हैं, तीनों कालों का भी पता है, जो होना है वो होना ही है, नथिंग न्यू, सब पता है, फिर भी भय है, क्यों है, कोई तो कारण होगा ना। तो अगर आप और गहराई से देखेंगे तो भय का कारण होता है पाप कर्मों का बोझ। पाप कर्म जो है, डरता कौन है? जिस व्यक्ति के ऊपर, यानी जैसे आत्मा के ऊपर सूक्ष्म सा बोझ भी बहुत बोझ बन जाता है, तो अगर आत्मा के ऊपर पिछले पाप कर्मों के संस्कारों का बोझ है, उसको आप तीनों कालों का ज्ञान भी दे दो, उसको पक्का बता दो जो होना है वो होना ही है, उसको कह दो नथिंग न्यू, तू तो आत्मा है, शरीर छूट भी गया तो तेरा क्या जाएगा। लेकिन उसको अंदर पता है शरीर छूट भी गया तो आत्मा बोझ साथ लेके जाएगी। उसको पता है ना शरीर तो छूट गया, लेकिन आत्मा के ऊपर वो जो बोझ है पाप कर्मों का, वो पूरा तो किया नहीं, इसलिए वो साथ लेके जाएगी। अब धर्मराजपुरी में भी जो विनाश के से डरते हैं, विनाश से कौन डरते हैं? जो स्टूडेंट होशियार होता है इम्तिहान के लिए, वो तो कहता है मेरा इम्तिहान आए, मैं पास हूं, जल्दी से आए ताकि मेरा ग्रेड बढ़े। और जो कमजोर होता है वो क्या सोचता है? आज कोई नेता मर जाए, इम्तिहान एक दिन टल जाए, हैं? वो ये सोचता है। अच्छा, इसी प्रकार से जो व्यक्ति विनाश से डरता है या अपनी मृत्यु से डरता है, क्यों डरता है? एक मुरली में आया था, बाबा ने कहा एवर रेडी हो? हाँ जी, हम एवर रेडी हैं। आप सब एवर रेडी हैं? हैं? जो एवर रेडी है जरा हाथ उठाओ तो। अरे ये क्या बात है, हैं? नहीं एवर रेडी, एक दूसरे को देखकर ही उठा दो, मैंने इसीलिए सबसे पहले उठाया था। एवर रेडी हैं? नहीं, देखो एक रीति से तो सब एवर रेडी हैं। अगर बुलावा आ गया तो हमारी मर्जी है कि हम नहीं जाएंगे, एवर रेडी तो होना ही पड़ेगा, है ना? जल्दी से भी तैयार होना पड़ेगा। अच्छा भाई ठीक है, साफ पूरा हुआ। तो एक बारी हमें किसी ने कहा 2 घंटे का योग करवाओ, 2 घंटे का। मैंने कहा भी सब इकट्ठे हुए 2 घंटे का योग कराएंगे, किसी का कैसा, किसी की कैसी अवस्था होगी, किसी की कैसी, किसी को अभ्यास होगा, किसी को नहीं होगा, वो जिसको नहीं है वो दूसरे को भी वाइब्रेशन देता रहेगा, कैसे कराएं इनको 2 घंटे का योग? इनको पता भी ना लगे 2 घंटे क्या हो गए। तो हमने उनको काम दे दिया, हमने कहा देखो ऐसा है, समझो क्या विनाश का टाइम आ गया, ठीक है, आना तो है किसी दिन। अभी आपको तैयार होना है जाने के लिए, आपको थोड़ा सा टाइम है, 2 घंटे का टाइम है, उसमें आपने पूरी तैयारी करनी है। एंड में तो 2 घंटे भी नहीं मिलेंगे। अब आप सोचो कि मेरी कहां कहां किस किस के साथ लगाव है, कौन कौन सी चीजें मुझे मेरी आत्मा को खींचती हैं, अच्छी लगती हैं, उनसे छुट्टी ले लो खुशी खुशी। बजाय इसके एडवांस नोटिस मिल गया तो कहो अच्छा भाई माता जी अब हमारा आपका साफ पूरा हुआ, अब हम जा रहे हैं, भाई जी हम जा रहे हैं। जिससे भी जो चीज है, कोई चीज अच्छी लगी, नई चप्पल खरीद के लाए हैं, और चप्पल जी अब हमको नहीं पहनेंगे, ठीक है, जो भी नई चीजों से अपना लगाव हटा लो। अच्छा फिर किसी को आपको किसी का आपसे मन मिटाओ हो, वैर विरोध हो कि भाई इससे तो देखकर इसने मेरी जिंदगी को शांति भंग कर रखी है, और सब हमें शांति में रहने देते, इसने तो मेरा सारा शांति छीन के ले जाते हैं, तो उससे भी कहो अच्छा भाई चलो अब जो हुआ सो हुआ है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, हम जा रहे हैं। सबसे अच्छी तरह साफ चुप तो कर लो, फिर आपको क्या ख्याल आएगा? फिर आपको आएगा भाई चलो अगर शरीर में होते तो माउंट आबू में जाके दादी जी से छुट्टी ले आते, या अपने जोन इंचार्ज से वो भी ले लो कि भाई अच्छा अब हम जा रहे हैं, अब आप हमें खुशी खुशी छुट्टी दे दो, जो है सब ठीक है, हमें विदाई दे दो। अच्छा उसके बाद आपको क्या ख्याल आएगा कि भाई हमने मनसा सेवा नहीं की, है ना, पूरी सेवा तो करी नहीं, तो आप ऊपर ऊपर की स्टेज पर बैठकर सृष्टि के ग्लोब पर सारी आत्माओं को अच्छी तरह से मनसा सेवा कर दो, भाई हम आपको जानते या नहीं जानते, आप कितनी दूर बैठे हो, आपको हम योग का दान दे रहे हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं, हम अपनी पूरी ताकत से आपकी आपको शुभ भावना रख के जा रहे हैं, अच्छी तरह से मनसा सेवा भी कर लो। फिर कई कहते हैं हम सूक्ष्म वतन में नहीं गए, कभी ध्यान में नहीं गए, सूक्ष्म वतन भी चले जाओ अच्छी तरह से, जितनी एडवांस पार्टी की आत्मा है सबसे छुट्टी ले आओ, एंड रेडी वगैरह होके आपको हम बिल्कुल तैयार है, और हमें कोई गिला शिकवा नहीं, हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, प्रसारद कम किया, जो है पूरा कर लो अच्छी तरह। پھر آپ جاؤ. اب سب لگ گئے اس کام میں تو دو گھنٹے تو بیت گئے ہیں, ان کو پتا بھی نہیں لگا کوئی کہیں کہیں کچھ کر رہا تھا, کسی کا کچھ رہتا تھا کسی کا کچھ. تو کہنے کا بھاو یہ ہے اگر ہمیں سچ مچ کرنا ہونا تو یہی ہے کہ ہم نے جی جب اچانک نوٹس مل گیا ہم کہیں گے ہم نے اپنے رشتے داروں کو بھی میسج نہیں دیا, ہمارے پاس روز جو لوگ آتے تھے ان کو بھی سندیشہ نہیں دیا, ہم نے سوچا دے دیں گے دے دیں گے دے دیں گے, ایسے ٹائم پورا ہو گیا, ہم نے یہ بھی نہیں کیا وہ بھی نہیں کیا. اس واسطے گیان اس لیے ملا ہے کہ ایور ریڈی میں, یہ مطلب نہیں ایور ریڈی میں نے بلاوا آ جائے چلو, وہ تو جانا ہی ہے اس کے لیے مجبوری ہے ایور ریڈی کی, لیکن کمپلیٹ ہو کر ریڈی رہنا کہ اب بلاوا آ جائے جب مرضی آ جائے میری طرف سے میں کمپلیٹ ہوں. جیسے ایک پھل ہوتا ہے پیڑ سے لگا ہوتا ہے, جب وہ پک جاتا ہے نا بالکل تو اس کی ڈنڈی جو ہے نا اتنی سخت نہیں رہتی, جب تک تو ڈنڈی کو رس لینا ہوتا ہے تو پیڑ سے ٹائٹ رہتا ہے, دھیرے 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 وہ رنگ پکڑ لیتا ہے, پھر ایسے ہی لٹکا ہوا ہوتا ہے معمولی سا جس کو کہتے ہیں کرماتیت اوستھا, ذرا سی ہوا آئی اچھا ایسا ہوتا ہے. ایک بار ہم بچے تھے, ہمارے پتا جی کا امرود کا باغ تھا, ہم چھوٹے تھے گئے تو ایک دو امرود بہت جڑے ہوئے پکے ہوئے لگے ہوئے تھے اونچے ہم سے, ہم سوچے ہوا چلے ہمارے پاس آ جائیں, تو سچ مچ ایسا ہوا ہوا چلی وہ دونوں امرود میرے ہاتھ میں آ گئے. اب اس بات کو ہو گئے 60 سال لیکن مجھے وہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو ایسے کیا وہ ہاتھ میں آ گئے, کیونکہ وہ کرماتیت تھے اور شاید میرے اس کو لینا تھا. اسی پرکار سے ہم کو بھی اب مان لو ہماری بڑی دادیاں ہیں تو سیوا کر رہی ہیں تو کرماتیتی ہے نا کہ بھائی نمت سیوا کر رہی ہیں, بابا بھاگے بنوا رہا ہے. اس واسطے ہم کو اس طرح کی کرماتیت رہنے کے لیے بابا نے بتایا ہوا. کیا بتایا ہوا؟ کیا ہم اینڈ کے وقت کرماتیت بنیں گے, اینڈ کے وقت کہیں گے جیسے میں نے بتایا ایکسرسائز کریں گے, اس سے چھٹی لے لو اس سے چھٹی لے لو, یا پہلے سے کریں گے؟ کیونکہ یہ ورش کون سا ہے؟ مکتی ورش ہے. تو مکتی کا مطلب کیا ہے؟ مکتی کا مطلب یہ ہے کہ رہیں لیکن چھوٹے ہوئے رہیں. ایک پنجرے کا پنچھی ہوتا ہے, پنجرے کا طوطا, پنجرے کی مینا, اچھا وہ جو میں میں کرتے ہیں, تو بابا کہتا ہے کہ آپ کام کرو لیکن اس میں آپ کی کیا ہو, لگاؤ نہ جائے. اچھا اچھی چیز میں بھی لگاؤ نہ جائے, اچھی چیز کا لگاؤ زیادہ میٹھا میٹھا بندھن ہے. مان لو ہمیں کوئی ڈیوٹی مل گئی, آپ نے یہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم نے وہ کام کیا, بہت محنت کر کے کیا, سب نے کہا بہت اچھا کیا, اب ہم کو خوشی ہو گئی کہ ہم نے تو یہ کام بہت اچھا کیا, سارے لوگ خوش ہو گئے. اب اس کام کو ہمیں دوبارہ دیا گیا آپ کرو, اب ہم نے کیا سوچا چلو کلاس مس کر دو, کام شاندار ہونا چاہیے, یہ بھی تو کام ہے نا بابے کا, یوگ مس کر دو کام بڑھیا ہونا چاہیے, کہیں بلایا ہے وہ بھی مس کر دو کام بڑھیا ہونا چاہیے. تو یہ کیا ہے کہ کام کا بندھن, اور سارے کام مس کر کے آپ نے ایک کام کر بھی دیا تو آپ کے سب سبجیکٹ کے نمبر ملیں گے یا اس کے ملیں گے؟ اس کے ملیں گے. اس لیے بابا نے کیا کہا ہوا, نمت بن کے کرو, اچھا ہو جائے تو بھی نمت, اتنے خوش نہیں ہو اچھا ہو جائے, اچھے کا اتساہ بنتا ہے لیکن اتنے نہیں کہ میں نے کیا میں نے کیا میں نے بندھن میں آ گئے. بابا نے کروایا بندھن نہیں ہے, مالک کا کام ہے. کسی مالک کا کوئی کہنا مان کے کچھ کرتا ہو جائے تو بھی ٹھیک, نہ ہو جائے تو بھی ٹھیک. ہمیں کوئی مارا مالک کہے جاؤ فلانے ویکتی سے پیسے وصول کے لاؤ, ہم وصول کے لے آئے تو بھی ٹھیک, نہیں لائے تو ہم کہیں گے جی اس نے دیے نہیں, وہ کہتا پرسوں لے جانا, ختم, ہمیں تو کچھ نہیں. اسی پرکار سے بابا کہتا ہے کہ اچھے میں بھی کسی بھی کرم کو کر کے دیکھیے کہ یہ کرم میرا مکت کرم تھا یا مجھے باندھنے والا کرم تھا. آپ نے کسی رشتے دار پر ہی ترس کھا لیا, اس کو بھی میرا رشتے دار ہے چلو, اس کو آپ نے 20 روپے دے دیے, چل بھائی لے جا, آپ نے سوچا کیا ہے رشتے دار ہے نا, ہمیں سارا پیسہ بابا کا, ہم بابا کے 20 روپے دے دیے تو کیا ہوا, 20 روپے تو گر بھی جاتے ہیں, لیکن اس سے کیا ہوا, آپ مکت ہوئے یا بندھن میں بندھے, وہ ویکتی پھر آپ کو اگلی باری پھر آ جائے گا. किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ भी आपने बातचीत की, कुछ एक्स्ट्रा कर ली। आपने कहा चलो क्या हुआ, थोड़ी बातचीत तो की है, अगली बारी क्या होगा, फिर बंधन में आ जाएंगे। आप लेक पे घूमने ही गए, आप गए, आप सोचे अच्छा इसको साथ ले चलते हैं, चल भाई मेरे साथ चल। अच्छा आपने सोचा इसमें क्या है, उसकी भी सैर हो जाएगी। अच्छा अगले दिन क्या होगा, जब आप सैर करने जाओगे, मान लो आपने कोई विचार सा, वो आके खड़ा हो जाएगा, आप सोचोगे अब ये ना आए, लेकिन उसको तो आपने आदत डाल दी। इस वास्ते किसी को आपने एक्स्ट्रा टोली ही दे दी, चलो इसके पास जाते हैं इसको टोली दे आते हैं। अगली बारी आप खाली आ जाओगे तो क्या सोचेगा, वो सोचेगा टोली नहीं लाया ये, ठीक है। इस वास्ते है छोटी छोटी बात, लेकिन आप कोई भी चीज एक्स्ट्रा करोगे आप फंसोगे। इसलिए बंधन से मुक्त मैंने के जितना जरूरी है, मुझे अपने पार्ट बजाना है, सबके साथ ठीक भी रखना है, लेकिन फंसना नहीं है, ना फंसाना है, इस ये है इसका। तो छोटे काम में या बड़े काम में, अच्छा भी काम हो उसमें मेरा बंधन ना बने, तब आपको आध्यात्मिक शक्ति रहेगी। वरना आपकी आध्यात्मिक शक्ति खुशी टेम्परेरी होगी, जिस दिन खुशी नहीं होगी उस दिन कहेंगे इस कारण से खुशी हुई ना। खुशी तो हमारी परमानेंट गुण है या किसी काम से खुशी होती है, ये बताओ। परमानेंट गुण है ना। एक व्यक्ति था, उसने एक महात्मा से पूछा, जी मैं शादी करवा लूं तो खुश रहूंगा या शादी ना करवाऊं तो खुश रहूंगा। महात्मा से उसने प्रश्न पूछा, महात्मा ने उसको कहा तू शादी करा के भी सुख खुश नहीं रहेगा और ना करवा के भी खुश नहीं रहेगा। उसने कहा ये क्या बात हुई। कहता इसलिए कि खुशी तो अंदर की चीज है और तू समझ रहा है बाहर से खुशी आनी है, हैं? इसलिए तेरा बेसिक थिंक सोचना ही गलत है। खुशी तो अंदर की चीज है, बाहर से कुछ भी हो जाए, शादी हो जाए या ना हो जाए, कोई व्यक्ति कुछ दे जाए या ना दे जाए, काम बन जाए या बिगड़ जाए, आपकी खुशी अगर अंदर की है तो कायम रहेगी। और अगर आपने सोचा कि ये हो गया तो खुश, नहीं हुआ तो नहीं खुश, तो वो तो बाहर से हो गया ना। इसलिए आत्मा का गुण ही क्या है, खुशी आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। आपके 100 रुपए का नोट गिर जाए आप धरती से झुककर भी उठा लेते हो, हैं? अच्छा लेकिन हमारा टाइम वेस्ट हो जाए, हम कहते चलो कल फिर आ जाएगा, वो टाइम तो नहीं आएगा ना। ऐसे आपकी खुशी को ले जाए, आमतौर पे हम क्या कहते हैं, मुझे गुस्सा नहीं आया जी, इसने मुझे गुस्सा दिलवा दिया, इसने हालात ही ऐसे पैदा, मैं बिल्कुल शांत, इसने मेरी शांति को भंग कर दिया। देखो सुबह के वक्त अमृत वेले आके इसने ठप ठप करना शुरू कर दिया, हैं? अच्छा ये देखो ना, ये कोई तरीका है बाथरूम में जाके आवाज करना शुरू कर दिया, तो ये इसने मेरी शांति भंग कर दी। ये क्या हुआ, मेरे से गिलास नहीं गिरा, इसने मुझे धक्का मारा, मेरे से गिलास गिर। सब काम हम दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। अच्छा कुछ भी किया, किसी ने भी किया, सचमुच भी। इस वास्ते ये ज्ञान क्या सिखाता है, नहीं तो ज्ञान का लाभ क्या हुआ। तीनों कालों का ज्ञान ले लिया, सतयुग का ज्ञान ले लिया, आने वाली दुनिया का ज्ञान ले लिया, परलोक का ज्ञान ले लिया, सब कुछ ले लिया, रहे कहाँ, रहे कहाँ। कोई किसी को कहे भाई ये सारी चीजें तेरे बचाव के लिए हैं, अगर यहाँ कुछ हो साथ वाले कमरे में चले जाना, वहां कोई दुश्मन नहीं आएगा, इधर चले जाना कोई दुश्मन नहीं आएगा, और दुश्मन आया तो गए ही नहीं, वहीं खड़े रहे। कबूतर का क्या होता है, कबूतर होता है भय का शिकार। कबूतर का क्या होता है, बिल्ली आई और उसने सोचा डर गया, आंखें बंद कर ली, जब तक झपटे वो बिल्ली है ही नहीं, है ना, उस समय से बिल्ली है ही नहीं, जब वो पकड़ लेती आके तो गया। अगर कबूतर होश में रहे, कबूतर के पास क्या होता है, पर होते हैं, उड़ सकता है। बिल्ली उड़ सकती है, नहीं उड़ सकती। अभी भी मुरली में आया था, अगर आप ऊंची स्टेज पर रहोगे तो माया नहीं पहुंच सकेगी। अगर कबूतर अपनी डाली पर बैठ जाए तो बिल्ली कैसे आएगी, लेकिन वो बेचारा अपना अपने विशेषताओं को भी ना जानकर उसको गुम करके मर जाता है। इसी तरह बाबा कहता है तुम कलयुगी शरीर में हो, कलयुगी दुख में हो, कलयुगी परिस्थितियों में हो, यहाँ धूप छांव गर्मी सर्दी भूख प्यास तंग परिस्थितियां हैं। अच्छा आप अपने फरिश्ते रूप में आ जाओ तो वो भी तो हमारा ही रूप है ना। अगर सचमुच शरीर छूट जाए तो अकारी शरीर तो मिलेगा ना, सूक्ष्म शरीर। अगर पहले ही फरिश्ते रूप में आ जाओ, आपको भूख लगेगी, आपको धूप लगेगी। बाबा कहते थे आप सारे आबू रोड से आबू पैदल चल के आ जाओ बाबा की याद करते हुए, आपको थकावट नहीं होगी। आप कभी भी देख लो, कभी आपको वेट करना पड़ जाए, कभी आपको चलना पड़ जाए, कभी भूख ज्यादा काम करना पड़ जाए, आप बाबा की याद में रहोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा, और वैसे आपको लगेगा। इसलिए ये जो हम सोचते हैं ना, क्या ये ठीक है, ये गलत है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये सच है, ये झूठ है, तो क्या होता है, हम सच के साथ साथी बन जाते हैं, झूठ के घृणा शुरू कर देते हैं, राइट के साथी बन जाते हैं, रॉन्ग से घृणा शुरू कर देते हैं। क्या हमें घृणा करनी चाहिए रॉन्ग से? परमात्मा किसी से घृणा करता? हम कहते नहीं, हम तो खराब चीज से घृणा कर रहे हैं ना, हम तो झूठ से घृणा कर रहे हैं ना। इस यज्ञ में आकर किसी को झूठ थोड़ी बोलना चाहिए, ये तो रोज ही झूठ बोलता। हम तो चोरी से घृणा कर रहे हैं ना, इसने एक आम मिला था, एक दूसरा भी उठा लिया, है ना, ये तो बड़ी खराब बात है, ये कोई ज्ञान है? अच्छा, उसने जो भी किया, आप ने फर्क देखा ना, ये अंधेरा है, ये रोशनी है। परमात्मा की दुनिया में जाओ, अंधेरा रोशनी है, दिन रात है, सुख दुख है, नहीं है, तो वो मुक्ति धाम है। तो अगर हम सचमुच ये सोचें, छोटा ज्ञान क्या है, ये सच है, ये झूठ है, प्राइमरी स्कूल का ज्ञान है, यूनिवर्सिटी का ज्ञान क्या है, सच भी सच है, झूठ भी सच है। अगर आप गौर से देखोगे, राइट भी राइट है, रॉन्ग भी राइट है, क्योंकि ड्रामा में है। ड्रामा में कुछ रॉन्ग होता है, मान लो आपसे ही कोई गलती हो गई तो क्या कहोगे, ड्रामा? अब उसको आप ठीक तो कर नहीं सकते, ड्रामा कह के छोड़ तो दोगे? अगर ये सोचे हाय मैंने गलती कर ली, फिर से फिर ना हो जाए, ये तो बहुत खराब हुआ, मैंने गलती कर ली, इतना टाइम वेस्ट कर दिया, और ये जो आप कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, उसकी माला फेर रहे हो। इस वास्ते जो है, मान लो हमारा पार्टी है, आप सबका पार्ट है, हम कहें इसका पार्ट बड़ा अच्छा है, इसको बड़ा अच्छा पार्ट है, मेरा भी कोई पार्ट है, रोटी बनाते रहो, और 1,00,000 रोटियां बनानी है, कच्ची पक्की बनाओ, और टाइम भी हो गया, देखो गुलजार बहन का क्लास होने वाला है, मैं यहाँ सब्जी बना रहा हूँ, बनाओ जल्दी से, पूरी करो, ये क्या है? इसलिए अपने पार्ट को गलत समझना। बाबा ने कहा कुछ भी करो, आपकी अवस्था ठीक है, आपकी स्थिति ठीक है, स्थिति के नंबर है, काम के नंबर नहीं है। अच्छा, आप क्या करते हो उसके नंबर नहीं है, हम क्या करते समझते काम के नंबर है, शायद मेरे कपड़े ज्यादा सफेद होंगे तो मेरे को ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, इसलिए खूब कपड़े धोने शुरू कर देते हैं, ये मेरा टिप टॉप होगा, मेरे को ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, दादी जी से 4 बार मिलूंगा ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, 1 बार मिलूंगा शायद कम मिलेंगे, ये ठीक है ये बात? इस वास्ते अपने पार्ट्स को खराब समझना, घटिया समझना, दूसरे के पार्ट को अच्छा समझना, ये क्या है, ये परचिंतन है? क्या है ये परचिंतन? क्या होता है फिर परचिंतन से क्या होता है? परचिंतन दोनों तरफ नुकसान करता है, अपने से नीचे वाले को देखोगे अलबेले हो जाओगे, ये तो रोज लेट क्लास में आता, मैं इससे तो पहले आता हूँ ना, अच्छा अलबेले, मैं भी चलो थोड़ा सा ही लेट आता हूँ ना, ये तो बहुत लेट आता है परचिंतन। अच्छा, अपने से ऊपर वाले पे देखोगे इसको तो बहुत चांस मिलता है सेवा करने का, भाषण करने का, तो निराश हो जाओगे, मुझे तो चांस ही नहीं मिलता। अच्छा, 108 की माला भी बना लोगे बैठ के, ये मेरा तो नंबर आया ही नहीं। तो परचिंतन बाबा ने कहा इसमें ये आता है कि मेरे पार्ट को देखना, कि मेरा पार्ट दूसरे से खराब है या दूसरे से अच्छा है, ये भी परचिंतन है। परमात्मा ने हमें फिट दिया है, कई ये कहते हैं हम देर से आए, हम पहले आ जाते 1936 में आ जाते तो बहुत हम बहुत तपस्या कर लेते, बहुत हमारे नंबर हो जाते, हम आई अब हैं, ये ठीक बात है? अगर आप 1936 में आ जाते तो क्या होता, आप भगंती हो जाते बीच में ही, या अगले जन्म में चले जाते, क्या मालूम। इसलिए जिसको जिस वक्त आना है, जिस परिस्थिति में आना है, जो पार्ट मिलना है, और भगवान का घर है, परमात्मा एम्प्लॉयमेंट देता है यहाँ, ऐसे भी नहीं कि हम मनुष्यों ने हमें रखा हुआ, आपको किसने यहाँ रखा हुआ है, आपको जो सौभाग्य मिला हुआ है सेवा करने का किसने रखा हुआ है? किसी आत्मा ने रखा? नहीं, बाबा ने रखा। एक भाई है यहाँ, बहुत योगी हैं, कई साल की तपस्या के बाद माउंट आबू में आए हैं। एक दिन मुझे बोले, भाई जरा हमारा ध्यान रखना। मैंने कहा क्या मतलब? बोले कि हम यहाँ आए हैं, अब यहाँ रहना चाहते हैं। मैंने कहा देखो भाई, आप अपने प्रारब्ध से आए हो, आपने इतना योग लगाया और उसका आपको फल मिल रहा है। आप अपना ध्यान रखिए, आपका ध्यान आप ही रख, हम आपका कैसे ध्यान रख सकते हैं? नकली हम आपको कह भी नहीं सकते आपका ध्यान रखेंगे। इस वास्ते आत्मा अपना मित्र है, अपना शत्रु है। हमें सिस्टम को जान लेना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते बाबा ने इसको क्यों रख दिया, ये तो इस काम के लायक ही नहीं है, ये भी गलत है। इसका मतलब हम बाबा को ही डाउट कर रहे हैं, बाबा ने इसको क्यों रखा। रामचंद्र जी ने जाने के बाद उसने खड़ाऊं रख के राज कर लिया था, ये तो जीते जागते हैं, पुतले बोलने वाले, इसको भगवान ने रख लिया, कुछ ना कुछ करा ही लेगा उससे। इसलिए हर बात में हमको फायदा सोचना चाहिए। तो बाबा राइट को राइट रखता है, रॉन्ग को राइट कर सकता है। बाबा का आप कहना मानेंगे उसी में से आपको फल दे देगा। लेकिन संशय सिर्फ ज्ञान में संशय नहीं होता, संशय किसी भी चीज में, अपने आप में संशय आ जाए, सिस्टम में संशय आ जाए, किसी के बोलचाल में संशय आ जाए, भी इसने देखो मेरी इज्जत नहीं की, इसने ऐसे कर दिया, मेरे को तो ध्यान ही नहीं दिया, ये सारा संशय। मान लो आम बटे, किसी को आम नहीं मिला, देखो मुझे तो आम ही नहीं मिला, उसको सारी रात नींद ही नहीं आए एक आम की खातर। जैसे साधु होते हैं ना, साधु के पास एक ही लोटा होता है, और उसका कोई लोटा छीन ले ना, वो समझते मेरी सारा कुछ छीन लिया, तो उसी में वो पानी पीता है, उसी में वो खाता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है। यही साधु लोटे के लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार से ऐसा तो नहीं है ना, आपकी कोई कुछ नहीं छीन सकता। परीक्षा आती है, परीक्षा आपको पक्का करती है। अगर मान लो चलो आपको मिल भी गया, किसी को दो दे दिए उन्होंने, फिर क्या करोगे आप? उसके दो मिलने से आपके एक का टेस्ट भी चला जाए, इसको दो क्यों मिल गए? तो आपने सुना हुआ ना, उसने कहा भगवान से मांगा, उसने कहा जो मांगोगे दूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ वाले को डबल दे दूंगा। तो तुम्हारा फ्रेंड है ना, बिल्कुल उसको डबल। उसने कहा वाह, मुझे एक कार मिल जाए, खुश हो गया, बड़ी अच्छी कार मिल गई। देखा तो उसको दो है, कहता ये तो बड़ा खराब हुआ है। फिर उसने कहा अच्छा, एक बहुत शानदार बढ़िया सेंटर मिल जाए, 2 एकड़ जमीन में 3 मंजिला मिल गया। उसने कहा वाह, उधर देखा तो उसको दो मिले हुए हैं, ये तो ठीक नहीं हुआ, अज्ञानी था वो, तो हम तो ज्ञान की बात कर रहे हैं। उसने कहा ऐसा कौन सा काम करूं जो उसका नुकसान हो जाए, उसका अपना फायदा भूल गया। उसने कहा मेरी एक आंख फूट जाए है? अब ये मांगना शुरू कर दिया। इसलिए दूसरे को देखना, किसी की तरफ ये करना, ये भी गलत है। हमें अपना भाग्य मिला हुआ है, उसको कायम रखना है। तो दूसरे कई बार तकलीफ इसलिए होती है दूसरे के कारण, दूसरे को सम्मान मिल रहा है इसलिए मुझे सम्मान नहीं मिल रहा, तो पता नहीं उसके पीछे क्या कारण हो। इस वास्ते हमें ध्यान रखना चाहिए। ओम शांति।